25 अप्रैल दिन भर दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदल। मुंबई की अदालत ने 2006 के मालेगांव केस में शामिल 9 लोगों को बरी किया।
पूरा इंसाफ उस वक्त होगा जब इस बम धमाके के जो असली मुजरिमीन है उनके ऊपर कानून का शिकंजा कसा जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जो सजा है दी जाए, और ये नौजवान जो 5 साल तकलीफ में गुजारे उनकी सुख झेला है उसका कुछ न कुछ उस जख्म पे मरहम रखने की कोशिश की जाए।
बात करेंगे अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला से।
प्रधानमंत्री ने ये मालूमात मांगी है कि माइनॉरिटी के कितने लोग सर्विसेज में हैं, क्या गैप है, क्या कमी है।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर और खेल समाचार भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। महाराष्ट्र के मालेगांव में 2006 में हुए धमाकों के मामले में मुंबई की विशेष अदालत ने 8 अभियुक्तों को बरी कर दिया है। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से एक अभियुक्त की पहले ही मौत हो चुकी है। ये अभियुक्त 5 साल जेल में बिता चुके हैं और बाद में इनमें से 7 अभियुक्तों को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। 8 सितंबर 2006 को मालेगांव की हमीदिया मस्जिद के नजदीक धमाकों में 37 लोगों की मौत हो गई थी और 100 ज्यादा लोग घायल हो गए थे। यमन में लड़ रहे सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन बलों के कमांडर ने कहा है कि मुकाला शहर पर हुए हमले में अलकायदा के 800 लड़ाके मारे गए हैं। मुकाला अलकायदा की मजबूत पकड़ वाला शहर है। सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसी SPA पर आए एक बयान में गठबंधन बलों ने कहा है कि कई चरमपंथी शहर से भाग गए हैं। हालांकि मृतकों की संख्या को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा है कि पाकिस्तान को तालिबानी चरमपंथियों से लड़ने के लिए अपनी कोशिशें बढ़ानी चाहिए। संसद में राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि पाकिस्तान को सैन्य कार्रवाई के अपने वादे को निभाना चाहिए। आज मैं साफ कहना चाहता हूं कि हमें उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान तालिबान को शांति वार्ता के लिए राजी कर पाएगा। हम चाहते हैं कि 4 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ था उसके मुताबिक पाकिस्तान अपने वादे को निभाए और तालिबान के ठिकानों और नेताओं पर सैन्य कार्रवाई करे। जो हमारी और सहयोगी देशों की खुफिया जानकारी और खुद पाकिस्तान के अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद है। ये थे अशरफ गनी के शब्द, आप सुन रहे हैं BBC समाचार। नेपाल में सहायता संगठनों ने कहा है कि पिछले साल आए भयंकर भूकंप के बाद पुनर्निर्माण के लिए भेजी गई राहत राशि में से कुछ भी खर्च नहीं किया गया है। पिछले साल आए भूकंप में करीब 9,000 लोगों की मौत हो गई थी और नेपाल में कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ था। लाखों लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। सहायता संगठन ऑक्सफैम के प्रवक्ता ने कहा है कि नेपाल में पुनर्निर्माण राजनीति की वजह से फंसा हुआ है। वहीं रेड क्रॉस के प्रवक्ता ने इसके लिए नौकरशाही को जिम्मेदार ठहराया है। तुर्की की सरकार ने कुर्द संगठन PKK में युद्ध में तेजी लाने की धमकी को खारिज कर दिया है। BBC को दिए एक इंटरव्यू में कुर्द कमांडर सेमिल बाइक ने कहा था कि अगर तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अरदोगान अपनी जाति संहार की नीति को छोड़कर बातचीत शुरू नहीं करते हैं तो PKK लड़ाई तेज कर देगा। राष्ट्रपति अरदोगान के सलाहकार ने बातचीत की पेशकश को ठुकरा दिया है और कुर्द संगठन पर अलग देश बनाने की कोशिश का आरोप लगाया है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में मेलबीक मेट्रो स्टेशन और हवाई अड्डे पर आत्मघाती हमले के एक महीने बाद आज मेट्रो सेवा पूरी तरह बहाल कर दी गई है। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। मुंबई की अदालत ने 2006 के मालेगांव ब्लास्ट केस में नामित सभी 9 लोगों को बरी कर दिया है। इस ब्लास्ट में 37 लोगों की मौत हो गई थी। ATS की जांच में इन लोगों को सिमी का सदस्य बताया गया था और जांच के मुताबिक इन लोगों ने पाकिस्तानी पृथकतावादी संगठन लश्करे तैयबा की मदद से ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया था। ATS की जांच के बाद ये केस CBI को दिया गया था और CBI ने भी ATS की जांच को सही ठहराया था। इस केस में नया मोड़ तब आया जब 2011 में केस का चार्ज NIA ने ले लिया था। मुंबई से अश्विना गौर की रिपोर्ट।
महाराष्ट्र के मालेगांव में वर्ष 2006 में हुए बम धमाकों के अभियुक्त 8 युवकों को मुंबई के विशेष एनआईए अदालत ने सबूतों के अभाव में सारे आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत का यह फैसला महाराष्ट्र एटीएस तथा सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के लिए बड़ा झटका है। इस फैसले के बाद मालेगांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। इन धमाकों के बाद मौलाना अबू रिजवान की अगुवाई में कुल जमाती तंजीम की स्थापना हुई थी, जो इन धमाकों के अभियुक्तों को बेकसूर मानते हुए उन्हें इन सारे आरोपों से बरी कराने के लिए कानूनी मदद मुहैया करा रही थी। हमने अबू रिजवान से इस बारे में बात की।
सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, हम लोगों का मालेगांव के शहरी और हम लोगों का शुरू दिन से ये कहना था कि ये जिन बच्चों को, जिन लड़कों को अरेस्ट किया गया है इस केस में, ये लोग बेगुनाह है। आज जो अदालत का फैसला आया है, इस पे हमें हैरत भी है, क्योंकि आजकल जो खबरें आ रही थी गवर्नमेंट की तरफ से और जो दूसरे पक्ष की तरफ से कि भाई कुछ कागज गायब हो गए, कुछ ये हो गया वो हो गया, उससे हमको कुछ शक पैदा हो रहा था। उसके बाद जब ये अदालत का ये फैसला हुआ तो इस पर हमको खुशी भी है और हमारे हिंदुस्तान की जो कोर्ट और अदलिया है इस पर हमको इत्मीनान भी हासिल हुआ। हमको कुछ आशंकाएं और कुछ दुविधा भी है कि भाई ये इंसाफ अभी अधूरा हुआ है। पूरा इंसाफ उस वक्त होगा जब इस बम धमाके के जो असली मुजरिमीन है उनके ऊपर कानून का शिकंजा कसा जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जो सजा है दी जाए और ये नौजवान जो 5 साल तकलीफ में गुजारे हैं, उनकी दुख झेला है, उसका कुछ ना कुछ उस जख्म पे मरहम रखने की कोशिश की जाए।
ये थे मौलाना अबू रिजवान। वर्ष 2008 में मालेगांव के बड़ा मस्जिद इलाके में हुए इन धमाकों में 37 लोगों की जान गई थी और अन्य कई घायल हो गए थे। इस मामले की शुरुआती जाँच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी और कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। बाद में यह मामला सीबीआई को सौंपा गया था, जिसने महाराष्ट्र एटीएस की तफ्तीश और गिरफ्तारियों पर मुहर लगाते हुए चार्जशीट तैयार कर ली थी। लेकिन इसके बाद वर्ष 2011 में यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को सौंपा गया। एनआईए की तफ्तीश में इस मामले में कई ऐसे पहलू सामने आए जिनका स्पष्टीकरण मुश्किल था। इसी दौरान समझौता एक्सप्रेस धमाकों के आरोपी स्वामी असीमानंद ने एनआईए को दिए अपने बयान में कहा कि संजय जोशी नामक एक व्यक्ति ने उन्हें यह बताया था कि मालेगांव के 2006 और 2008 के बम धमाके एक ही गुट ने किए हैं। इस बयान के कुछ दिन बाद संजय जोशी का कत्ल हो गया और स्वामी असीमानंद भी अपने बयान से मुकर गए। तफ्तीश के दौरान इस मामले में एक अभियुक्त की मृत्यु हो गई। आज हुई इस कार्रवाई में एनआईए ने अदालत में यह माना कि इन 8 अभियुक्तों के खिलाफ उसके पास कोई सबूत नहीं है, जिसके बाद जज वी पाटिल ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया।
ये थी अश्विन अघोर की रिपोर्ट। जैसा कि आपने सुना, 8 सितंबर 2006 को मालेगांव की हमीदिया मस्जिद के नज़दीक धमाके में 37 लोग मारे गए थे और 100 से ज़्यादा घायल हो गए थे। लेकिन 2 साल बाद मालेगांव में हुए एक और बम धमाके के बाद जो गिरफ्तारियां हुई, उनमें इल्ज़ाम अभिनव भारत नाम की संस्था से जुड़े लोगों के खिलाफ लगाए गए। मक्का मस्जिद, समझौता एक्सप्रेस और अजमेर शरीफ बम धमाकों का भी इल्ज़ाम इन्हीं लोगों पर लगा। इस पूरे मामले को समझने की कोशिश की है हमारे साथी जुबैर अहमद ने, जो मालेगांव के दोनों बम धमाकों को बीबीसी के लिए कवर कर चुके हैं। उनकी ये रिपोर्ट।
8 सितंबर 2006 शुक्रवार का दिन, ये महाराष्ट्र के मालेगांव शहर के लोगों के लिए एक पवित्र दिन है। शहर की 7 लाख आबादी के 2/3 लोग मुसलमान हैं, जिनके पूर्वज आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से बताए जाते हैं। उस जुमे को अचानक 3 बम धमाके होते हैं, जिनमें से 2 एक मस्जिद के सामने और 1 कब्रिस्तान में। इस मामले में 9 मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाता है। उनके नाम थे नूरुल हुदा शमसुद्दोहा, शब्बीर अहमद मशीउल्लाह, रईस अहमद रज्जब अली, सलमान फारसी, फरोग इकबाल मखदूमी, शेख मोहम्मद अली आलम शेख, आसिफ खान, बशीर खान और मोहम्मद जाहिद अब्दुल मजीद। अगले साल हैदराबाद की मक्का मस्जिद, समझौता एक्सप्रेस ट्रेन और अजमेर शरीफ में बम धमाके हुए और फिर 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में फिर से धमाके हुए। इस बार मामला मुंबई के आतंकवादी विरोधी दस्ते यानी एटीएस को सौंपा गया, जिसके अध्यक्ष हेमंत करकरे ने दावा किया कि धमाके के पीछे कुछ हिंदुओं का हाथ है। उनके अनुसार इन लोगों का संबंध अभिनव भारत नामी एक संस्था से था। 10 हिंदू गिरफ्तार किए गए, जिनमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पिरोहित और समीर कुलकर्णी जैसे नाम शामिल थे। कुछ समय बाद स्वामी असीमानंद नामी एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में धमाके में शामिल होने का इल्ज़ाम था। एटीएस के अनुसार उन्होंने स्वीकार किया कि 2006 और 2008 वाले मालेगांव बम धमाके से लेकर मक्का मस्जिद और समझौता एक्सप्रेस धमाकों में उनके और उनके सहयोगियों का हाथ था। तो इसके बाद मालेगांव में 2006 में हुए बम धमाकों में गिरफ्तार 9 मुसलमानों ने कहा वो बेकसूर हैं और उन्हें रिहा किया जाए। आज उनमें से 8 की रिहाई हुई। एक की मौत हो चुकी है। मुंबई के वरिष्ठ वकील मजीद मेमन कहते हैं कि एक केस में दो अलग अलग गिरोह पर मुकदमा चलाना सरासर बेवकूफी थी।
देर आयत दुरुस्त आयत के इंसाफ तो उनके साथ पार्शली तो हो गया है, मगर मेरा ये मानना है कि अगर ऐसे मामलात में जिन्होंने गैर जिम्मेदारानी तरीके से या तासुब की वजह से या सियासी वजूहात की बना पर या जो भी हो उसकी वजह, लेकिन गैर कानूनी वजह से अगर इस तरह से गिरफ्तारियां अमल में लाई थी तो उनको हरगिज बख्शा न जाए, और अगर उनके साथ सख्ती से कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो आने वाले दिनों में इस किस्म की हरकत या गुस्ताखी करने के लिए कोई पुलिस अफसर आगे नहीं बढ़ेगा।
तो क्या आज की रिहाई के बाद इस मुकदमे में जो दूसरे लोग शामिल हैं, जिनके नाम दूसरे धमाकों में भी हैं, उनके खिलाफ अब केस मजबूत हो जाएगा? मजीद मेमन कहते हैं शायद नहीं।
नहीं, कोई खास नहीं, देखिए वो इंडिपेंडेंटली एग्जामिन की जाएगी, उनकी उनके जो मेरिट्स है केस की या उनकी शहादतें हैं, गवाह हैं या डॉक्यूमेंट्री या सरकमस्टांशियल एविडेंस है, वो एसेस किया जाएगा अपने इंडिपेंडेंट ऑफ दिस डेवलपमेंट।
स्वामी असीमानंद इस समय जमानत पर जेल से बाहर हैं। साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित की जमानत रद्द की जा चुकी है, लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी ANI ने संकेत दिए हैं कि मक्का मस्जिद, समझौता एक्सप्रेस और अजमेर शरीफ वाले धमाकों में जितने भी अभियुक्त अब तक जेल में हैं, उनके खिलाफ मकूका कानून के अंतर्गत लगे इल्ज़ाम वापस लिए जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनके मुकदमे से मकूका कानून हटा लिया गया तो उन्हें जमानत मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर उनके खिलाफ गवाहों ने अपने बयानों से मुकरना शुरू कर दिया तो उनके खिलाफ मुकदमा और भी कमज़ोर हो सकता है। कुछ गवाह अपने बयान से मुकरना शुरू भी हो चुके हैं। ज़ुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
खबर सच है अगर BBC पर है।
भारत की अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने कहा है कि दो हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी नौकरियों में मुस्लिम भागीदारी का डाटा मांगा है। BBC हिंदी से खास बातचीत में कैबिनेट मिनिस्टर हेपतुल्ला ने कहा कि भारत में मुसलमानों के पिछड़ेपन के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि पुरानी सरकारें जिम्मेदार रही हैं। सुनिए BBC संवाददाता नितिन श्रीवास्तव से हुई इस बातचीत को।
अभी वेरी रिसेंटली, मुझे लगता है 15 दिन पहले, प्रधानमंत्री ने ये मालूमात मांगी है कि माइनॉरिटी के कितने लोग सर्विसेज में हैं, क्या गैप है, क्या कमी है। मैं यहाँ उस सरकार की एक बात बताऊँ, मुझे एक जॉइंट सेक्रेटरी चाहिए है हज के लिए, क्योंकि वो मुस्लिम होना चाहिए, उसको सऊदी अरेबिया हज भी मुझे दे दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, हज अभी मेरे साथ शामिल हुआ है। तो हज के लिए मुझे एक जॉइंट सेक्रेटरी चाहिए। पिछली सरकार जो मुसलमान मुसलमान का नाम ले जपती थी, उन्होंने इस लेवल का एक ऑफिसर मुझे नहीं मिल रहा है कि जो मेरे यहाँ जॉइंट सेक्रेटरी बनाए, ढूंढना पड़ रहा है अलग अलग
नौकरियों में और फौज में
बहुत कमी है। अब मुझे एक एक से कहना पड़ रहा है प्लीज़ मुझे एक मुस्लिम ऑफिसर चाहिए, और जगह पे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कोई भी ऑफिसर हो सकता है, मगर हज के लिए उसको जाना पड़ेगा वहाँ देखने के लिए, तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी मक्के और मदीने में। तो आई हैव टू हैव एन ऑफिसर हु इज़ मुस्लिम ऑफिसर, वो नहीं मिल रहा है मुझे।
क्या मोदी चाहते हैं कि सरकारी नौकरियों में, फौजों में मुसलमानों की तादाद?
इसीलिए तो उन्होंने उसका इंक्वायरी कराई है, असेसमेंट करवाया है, ऑडिट कराया कि क्या है पोजीशन, क्या है आज। मतलब मेरी समझ में नहीं आता जो लोग अभी भी एतराज़ कर रहे हैं।
मुस्लिम कम्युनिटी में क्यों एक ऐसा सेंटिमेंट क्यों बैठ गया है, जो लोग कहते हैं एंटी नरेंद्र मोदी ही है वो सेंटिमेंट?
नहीं नहीं बैठा।
पार्लियामेंट शुरू हो चुकी है, एक नया सेशन शुरू हो गया है, विमेंस रिजर्वेशन बिल जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात थी, ये गवर्नमेंट भी अभी तक उस पर कुछ नहीं कर पाई है, पिछली गवर्नमेंट्स भी नहीं कर पाई थी, क्या आपको लगता है कि क्या रुकावटें क्या है उस पर?
देखिए रुकावटें हमारी तरफ से तो कोई नहीं है, पिछली सरकार ने जब ये बिल लेकर आए तो वो पास हुआ क्योंकि हमने सपोर्ट करा उसको, दूसरे लोग अपोज कर रहे थे उसके बावजूद हमने सपोर्ट करा और बिल राज्यसभा में से पास हो गया। क्योंकि इसका रेजोल्यूशन जब मैं डिप्टी चेयरमैन थी तो मैंने 90 बीजिंग कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने ही मूव किया था राज्यसभा में। नेचुरली मेरा तो कमिटमेंट है कि महिलाओं को सत्ता में भागीदारी नहीं मिलेगी, और मैंने 1997 में एक कॉन्फ्रेंस करी थी टुवर्ड्स पार्टनरशिप बिटवीन मेन एंड वुमेन इन पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी IPU की। तो अगर किसी भी समाज में महिलाओं को उसका बराबर हक नहीं मिलता है तो उस समाज तरक्की याफ्ता नहीं होता, और प्रधानमंत्री का कमिटमेंट है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ अगर सबका विकास करना है सबके साथ में सबका विकास करना है तो उसमें महिला भी शामिल है और इसके लिए उसको सत्ता में भागीदारी देना जरूरी है।
अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला से बात कर रहे थे नितिन श्रीवास्तव। ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 49 सीटों के लिए आज चौथे चरण का मतदान संपन्न हुआ। इसमें राज्य के 9 मंत्रियों और 2 पूर्व मंत्रियों के भाग्य का फैसला हो गया। चुनाव आयोग के अनुसार 5 बजे तक करीब 78% मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग कर लिया था। मैंने थोड़ी देर पहले कोलकाता फोन कर अमिताभ भट्टासाली से संपर्क किया और पूछा कि मतदान शांतिपूर्वक रहा या हिंसा की भी कुछ खबरें हैं।
देखिए, आज छुटपुट घटनाएं तो घटी है पर बड़ी कोई हिंसक घटना की खबर नहीं है। तो ज्यादातर जो आरोप उठता रहा सुबह से ही वो सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ही आ रहा था। करीब 2,225 कंप्लेन चुनाव आयोग के पास आज आया है और ज्यादातर घटनाएं कहीं तो फॉल्स वोटिंग की आरोप है, कहीं बूथ जैमिंग की आरोप है, कहीं बाहरी क्षेत्र से लोग लाने का आरोप लग रहा था और एक स्थानीय टेलीविजन के माध्यम से ये देखा गया कि एक मिनिस्टर अपने कुछ साथियों को लेकर के बूथ के अंदर गए और वहां जो फॉल्स वोट डाले जा रहा है एक के बाद एक। और एक घटना कल की है जहां एक सीपीआईएम समर्थक एक परिवार को डराने धमकाने के लिए गए थे कुछ तृणमूल कांग्रेस के गुंडे और उस परिवार के जो 3.5 साल का एक बच्चा था उसको भी मारा पीटा गया। और ये खबर मिलते ही चुनाव आयोग ने आज रिपोर्ट तो मांगा ही था और बाद में पुलिस प्रोटेक्शन से उस परिवार को वोट देने के लिए खुद चुनाव आयोग के अफसर लेके गए थे वोट डालने। और ज्यादातर ऐसे ही छोटे मोटे घटनाओं की खबर आता रहा दिन भर।
ये तो आपने घटनाओं की बात की लेकिन मतदान का प्रतिशत कैसा रहा, कितने लोग बाहर आए मतदान देने के लिए?
काफी लोग आए थे, फाइनल आंकड़ा तो अभी तक नहीं मिला पर 3 दिन में 3 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 67% मतदान का आंकड़ा मिल रहा था। तो लग रहा है कि पोलिंग खत्म होने से 3 घंटा पहले का आंकड़ा है और लग रहा है कि फाइनल आंकड़ा करीब 80 के आसपास तो पहुंच ही जाएगा। ये एक अच्छी साइन दिख रहा है विपक्षी दलों को क्योंकि पिछले म्युनिसिपल इलेक्शन की ओर अगर हम देखें तो वहां वोटिंग कर ही नहीं पाए थे ज्यादातर लोग। कोलकाता से सटा हुआ इलाका जो सॉल्ट लेक में है तो वहां काफी हंगामा हुआ था और इस बार ढेर सारे लोग सुबह से ही पोलिंग चालू होने से भी आधा घंटा 45 मिनट पहले से ही लाइन में खड़े हो गए थे। हालांकि काफी गर्मी के कारण दिन में कुछ लाइनें कम दिखी थी पर 3:30-4 बजे के बाद से फिर लंबी लाइन दिखने को मिला।
ये थे कोलकाता से अमिताभ भट्टासाली।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जर्मनी में कहा है कि यूरोप अपनी सुरक्षा को लेकर लापरवाह बना हुआ है। ओबामा ने अमरीका के नाटो समूह के सहयोगियों से अपील की है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज्यादा धन आवंटित करें। ओबामा का कहना था कि इस्लामिक स्टेट ग्रुप से पैदा हुए खतरों से निपटने के लिए यूरोपीय नेताओं को अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने यूरोप की तारीफ करते हुए भी कहा है कि ये आधुनिक इतिहास की सबसे महान राजनीतिक और आर्थिक उपलब्धियों में से एक है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे विवरण के साथ अमर शर्मा।
अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जर्मनी की यात्रा पर हैं। जर्मनी में अपने भाषण में ओबामा ने बिखरने की राह पर खड़े यूरोपीय संघ को आगाह किया। ओबामा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एकीकृत यूरोप बेहद जरूरी है। ओबामा ने अपने भाषण में कहा कि वो यूरोप के दिल जर्मनी में पहुंचकर ये कहने आए हैं कि अमरीका और पूरी दुनिया को एक मजबूत, समृद्ध, लोकतांत्रिक और एकीकृत यूरोप की दरकार है। ओबामा ने कहा कि शायद किसी बाहरी और गैर यूरोपीय को याद दिलाना पड़ेगा कि यूरोप ने इतने बड़े पैमाने पर कितना कुछ हासिल किया है। इस मौके पर ओबामा ने यूरोप की जमकर तारीफ की। ओबामा ने कहा,
More than 500 million people speaking 24 languages in 28 countries, 19 with a common currency, in one European Union,
यूरोपीय संघ के 28 देशों में 50 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं जो 24 भाषाएं बोलते हैं, जिनमें 19 देशों की एक मुद्रा है। ये आधुनिक इतिहास की सबसे महान राजनीतिक और आर्थिक उपलब्धियों में से एक है।
ओबामा ने अपने भाषण में साफ कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें यूरोप से काफी उम्मीदें हैं। ओबामा ने कहा कि इस्लामिक स्टेट ग्रुप से पैदा हुए खतरों से निपटने के लिए यूरोपीय नेताओं को अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। ओबामा ने कहा कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाने वाली असाधारण सेना है, लेकिन मौजूदा खतरों के मद्देनजर अमेरिका अकेले इन चुनौतियों से नहीं निपट सकता। ओबामा ने इस बात की पुष्टि की है कि सीरिया में स्थानीय लड़ाकों की मदद के लिए अमेरिका सीरिया में अतिरिक्त सैन्य बलों को भेज रहा है।
Just as I've approved additional support for Iraqi forces against ISIL, I've decided to increase U.S. support for local forces fighting ISIL.
मैंने ISIL से लड़ने के लिए इराकी सेना की मदद के लिए अतिरिक्त सहायता भेजने का फैसला किया है। सीरिया में ISIL से लड़ रहे स्थानीय लड़ाकों की मदद के लिए मैंने अमरीकी सहायता बढ़ाने का फैसला किया है। अमरीकी स्पेशल ऑपरेशन सेना सीरिया में पहले से मौजूद है और उनकी विशेषज्ञता से कई महत्वपूर्ण इलाकों में ISIL को खदेड़ने में सफलता मिली है। अमरीकी सेना यहां खुद लड़ाई का नेतृत्व नहीं करेगी, बल्कि सिर्फ स्थानीय लड़ाकों को प्रशिक्षण और मदद देगी।
ओबामा ने यूरोपीय देशों से अपील की है कि वे सीरिया समेत अन्य संघर्षरत इलाकों से जान बचाकर भाग रहे लोगों की मदद करने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करें। ओबामा ने कहा कि दुनिया के देश ये तय नहीं कर सकते कि किसकी मदद करनी है और किसकी नहीं। दुनिया को अपने मूल्यों की रक्षा करनी होगी और उस वक्त में जब हालात आसान नहीं, बहुत कठिन है।
राष्ट्रपति ओबामा जर्मनी में। आज सोमवार है और आज आपको अपने पत्रों के उत्तर का इंतजार होता है। आपके पत्रों के साथ हैं राजीव जोशी और इंदु पांडे।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और मेरे साथ हैं
इंदु पांडे।
इंदु पांडे नमस्कार, उनका भी स्वीकार कीजिए, और इंदु हमारा भी नमस्कार स्वीकार कीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया।
चिट्ठियां आपके पास हैं, ईमेल हैं, बताइए कहां से शुरुआत कर रही हैं।
शुरुआत करते हैं गणेश प्रसाद हुजदार के खत से। ये जानकर दुख हो रहा है कि भारत में एक तरफ आतंक हत्या, हिंसा, बलात्कार और अपहरण जैसे जघन्य आपराधिक कार्य हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश के कई जगहों पर पानी के चरम अभाव की वजह से लोग कष्टकर जीवन जी रहे हैं। लगता है देश में सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं, नेता लोग सिर्फ अपनी तिजोरी भरने में मसरूफ हैं। इसे साफ जाहिर है कि भारत का लोकतंत्र सिर्फ दिखावा है।
देखिए, एक हमारे श्रोता का ये विचार है कि लोकतंत्र सिर्फ दिखावा है। लगता है बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि हमने जो सूखा भारत अभी रिपोर्टों की श्रृंखला चलाई है, उसको सुन करके मुझे ऐसा लगता है कि इनके अंदर काफ़ी उद्विग्नता और आड़ोलन बढ़ रहा है।
जी,
बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय आपने जाहिर की, और चिट्ठियां बताइएगा।
इरशाद अहमद सिद्दकी देवरिया यूपी से लिखते हैं कि संडे दिन भर में अमर सिंह से राजेश जोशी की बात बहुत अच्छी लगी।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आई बातचीत।
इसके लिए बीबीसी हिंदी और राजेश जोशी को तहे दिल से धन्यवाद प्रस्तुत।
लेकिन सिर्फ तारीफ ही है या कुछ लोगों को पसंद नहीं भी आई है?
शिकायत ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है।
बिल्कुल।
और शिकायत है असम के सुरेंद्र सिंह को ये बातचीत पसंद नहीं आई। उन्होंने लिखा है कि लगा ही नहीं कि बातचीत अमर सिंह जी से हो रही है। भाई, जिससे बात हो रही है उसके व्यक्तित्व पर चर्चा करते तो अच्छा लगता, चर्चा अमिताभ पर केंद्रित। आखिर बीबीसी के मित्र अमर सिंह के राजनीतिक पहलू, उनके भविष्य की नीति, उनके अतीत पर चर्चा करते तो अच्छा था।
नागांव से भाई सुरेंद्र, आप लगातार चिट्ठियां लिखते रहते हैं, इसलिए आप हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम लगातार सुनते भी होंगे। अमर सिंह से पहली बार हमने बातचीत नहीं की है, कई बार उनसे बात हुई है, उनके व्यक्तित्व पर भी बातचीत हुई है, लेकिन इस बार बातचीत का मकसद सिर्फ ये था कि वो अमिताभ बच्चन के बहुत नज़दीकी रहे, इसलिए अमिताभ बच्चन जो अभी ताज़ा कंट्रोवर्सी में या विवाद में फंसे हैं उसके बारे में उनके विचार जानना ही मकसद इस बातचीत का था।
आगे उत्सव कुमार हैं जगदीशपुर भागलपुर बिहार से, लिखते हैं कि उत्तराखंड की राजनीतिक हलचलों पर शिव जोशी की रिपोर्ट बहुत पसंद आई, उनकी प्रस्तुति का अंदाज निराला है।
इसमें कोई शक नहीं,
क्या रिपोर्ट है,
क्या रिपोर्ट है, और शिव जोशी ये कार्यक्रम को सुन ही रहे होंगे, आपका शुक्रिया उनकी तरफ से हम अदा कर देते हैं।
और ये चिट्ठी है अजय कुमार कैथवली की बलिया उत्तर प्रदेश से, लिखते हैं कि इंडिया बोल को परिचर्चा नाम दिया गया होता तो ज्यादा बेहतर होता।
इनकी इस बार के इंडिया बोल से शिकायत है लगता है, जिसमें ज्यादातर दो ही लोगों के बीच में बातचीत हुई, एक तरफ कांग्रेस के हरीश रावत थे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भगत सिंह कोश्यारी थे और थे हमारे मेहमान विनोद शर्मा। तो बातचीत कुल मिला के इन तीन चार लोगों के बीच में ही रह गई, श्रोताओं को हम शामिल नहीं कर पाए। ये आलोचना इनकी बहुत ही जायज़ है, तो हम इसे स्वीकार करते हैं।
और ये चिट्ठी है आपके लिए राजेश जी, राजेश कुमार पांडे की, लोहरा बरादमतपुर अम्बेडकर नगर यूपी से। ये जो आपकी अमेजॉन यात्रा थी ना, उसके बारे में है
बहुत
कि अगर हो सके तो कुछ रोचक बातें फिर से एक बार बताएं।
मुझे मेरे श्रोता बार बार याद दिलाते रहते हैं अमेजॉन के जंगलों से हमने जो रिपोर्ट्स की थी, काफ़ी साल गुजर गए हैं लेकिन हमारे श्रोताओं के दिमाग में जहन में वो यादें ताज़ा हैं। उन रिपोर्टों को किस तरह से दोबारा हम प्रसारित कर सकते हैं ये सोचना होगा, लेकिन अगर इसकी संभावना हुई तो हम आपको निराश नहीं करेंगे।
राजेश कुमार पांडे जी को मैं बता दूं कि राजेश जोशी जी की शक्ल देख के लग रहा है कि बिल्कुल उनको याद है एक एक चीजें।
बिल्कुल, मुझे एक एक पल याद है जी, शुक्रिया।
लखनऊ उत्तर प्रदेश से आशीष पांडे का लंबा पत्र है इसलिए पूरा नहीं पढ़ सकते, लेकिन उनका सुझाव है कि विवेचना जैसे कार्यक्रमों को यूट्यूब पर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। इन्होंने विवेचना के सभी अंकों की रिकॉर्डिंग सहज कर रखी है।
क्या बात है आशीष कुमार पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप पुराने श्रोता हैं और ये जान के बहुत खुशी हुई कि विवेचना के तमाम अंक आपने सहेज के रिकॉर्ड करके रखे हैं। मुझे मालूम है कि रिकॉर्ड करने में कितनी मेहनत लगती है और उनको सहेज के रखने में कितनी मेहनत लगती है, तो आपकी प्रतिबद्धता तो इस बात से ही जाहिर होती है। अभी हमारी जिम्मेदारी है कि आपके सुझावों पर हम अमल करें। कैसे करेंगे, कब करेंगे, अभी मैं आपको वादा नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये सुझाव बहुत अच्छा है, इस पर अमल करने की हम कोशिश करेंगे।
निहंगम का ईमेल है, बीबीसी को मैं सन 1975 से सुनता आ रहा हूं।
निहंगम कहां से लिख रहे हैं, ये नहीं लिखा इन्होंने?
नहीं, इन्होंने ये नहीं लिखा है, इन्होंने ईमेल किया है, विवेचना जैसे कार्यक्रम बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं और अच्छे ज्ञानवर्धक, अनोखे और दिलचस्प होते हैं। मुझे मालूम है कि मेरा ये पत्र न तो आप उद्घोष करेंगे और न ही वेटिंग में रखेंगे, फिर भी मैं कोशिश करता रहूंगा।
हमने निहंगम साहब को एकदम गलत साबित कर दिया है और अब हमें उम्मीद है कि वो लगातार चिट्ठियां लिखते रहेंगे, उनकी चिट्ठियां शामिल भी होंगी। लेकिन मैं घड़ी की सुइयों की तरफ देख रहा हूं इंदु जी, और अब वक्त है श्रोताओं से इजाजत चाहने का।
नमस्कार।
तो ये थे आपके पत्रों के उत्तर, अब देखते हैं खेलों की दुनिया में क्या हो रहा है आदेश कुमार गुप्त के साथ।
रियो डी जेनेरियो में आयोजित निशानेबाजी विश्व कप में आखिरकार भारत को पहली कामयाबी मिली जब महराज अहमद खान ने स्केट स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्वीडन के मार्क स्वेंसन ने स्वर्ण पदक जीता। इटली के तमारो कैसेंड्रो ने कांस्य पदक जीता। महराज अहमद खान इससे पहले साल 2010 में कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। वैसे महराज अहमद खान रियो ओलंपिक का टिकट भी हासिल कर चुके हैं। उन्होंने पिछले साल ISSF शॉटगन विश्व कप में छठे स्थान पर रहते हुए रियो का टिकट हासिल किया था। इस तरह स्कीट स्पर्धा में ओलंपिक में जगह बनाने वाले वे भारत के पहले निशानेबाज बने। उधर भारत के नौकायन खिलाड़ी दत्तू भोकानल ने दक्षिण कोरिया में आयोजित एशिया ओसेनिया ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में पुरुषों के एकल स्कल वर्ग में रजत पदक जीतकर रियो ओलंपिक के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। दत्तू भोकानल ने 2 किलोमीटर की दूरी 7:07.63 सेकंड में पूरी कर दूसरा स्थान हासिल किया। इस वर्ग में पहले 7 स्थानों पर रहने वाले खिलाड़ियों ने रियो के लिए जगह बनाई। वैसे भोकानल 1500 मीटर तक बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन इसके बाद कोरिया के डोंगयोंग किम ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। किम ने 7:05.13 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। भोकानल रियो में अकेले भारतीय नौकायन खिलाड़ी होंगे क्योंकि अब कोई क्वालिफिकेशन दौर नहीं बचा है। उधर शीर्ष वरीयता हासिल स्पेन के राफेल नडाल ने कल बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट अपने नाम किया। फाइनल में उन्होंने दूसरी वरीयता हासिल जापान के केई निशिकोरी को 6-4, 7-5 से मात दी। वहीं भारत की सादिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस कल ही पोर्श टेनिस टूर्नामेंट में भले ही महिला युगल वर्ग का फाइनल जीतने में नाकाम रही, लेकिन उनके रैंकिंग पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। सादिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस संयुक्त रूप से नंबर 1 पर बनी हुई हैं। कमाल की बात है कि दोनों के एक ही साथ 12,395 अंक हैं। भारत के युगल खिलाड़ी रोहन बोपन्ना जरूर अपनी रैंकिंग में गिरकर टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। बोपन्ना 9वें से 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं। पुरुषों की एकल रैंकिंग में यूकी भामरी भी 2 पायदान के नुकसान के साथ 113वें पायदान पर पहुंच गए हैं। वहीं IPL 9 में आज किंग्स 11 पंजाब का सामना मुंबई इंडियंस से है।
और अब चलते चलते मुख्य समाचारों पर एक नजर।
बीबीसी समाचार। बांग्लादेश में समलैंगिक विषयों की पहली मैगजीन के वरिष्ठ संपादक की हत्या कर दी गई है। बांग्लादेश में मीडिया रिपोर्टों और अधिकारियों से ये जानकारी मिल रही है। मैगजीन के संपादक के अपार्टमेंट में हमला किया गया, जिसमें एक और शख्स की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल है। रूपबान मैगजीन के संपादक समलैंगिक अधिकारों के लिए काम करते थे और उसके साथ साथ अमरीकी संगठन USAID के लिए भी काम करते थे। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की हेमंत कुशवाहा ने। रेहान फदल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।